हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और दादी को घूरते हुए बोला, दादी आप इस लड़की को मेरे कमरे में रहने की इजाज़त क्यों देती हैं? हाँ, क्या आपको पता नहीं कि मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं और नींद नहीं आती? जैसे ही सिद्धार्थ ने ये कहा, दादी माँ मन ही मन सोचने लगीं, मेरे सामने कितना बड़ा नाटक कर रहा है ये लड़का, खुद तो कैसे झलक से चिपक कर सोया हुआ था और अब मुझे इस तरह से गुस्सा दिखा रहा है मानो कोई गलती मैंने कर दी हो। अब जैसे ही दादी मन में सोचने लगी, झलक थोड़ा चौंकते हुए बोली, आप क्या सोचने लग गई हैं? आपने बताया था कि आपने मेरे लिए कोई नाश्ता बनाया है, प्लीज दीजिए ना फटाफट, मुझे बहुत भूख लगी है। तब दादी एक बार झलक के कपड़ों की ओर देखकर बोली, अरे अभी भी नाइट सूट पहना हुआ है, बेटा तुम सबसे पहले चेंज तो कर लो, और वैसे भी रणविजय किसी भी वक्त आने वाला है, हो सकता है कि वो हमारे साथ नाश्ता करे। अब जैसे ही दादी ने ये बोला, झलक पूरी तरह से हैरान हो गई। वो बोली, लेकिन दादी रणविजय जी के सामने मुझे तो साड़ी पहननी है ना, ग्रीन कलर की, आपने बोला था ना, लेकिन मुझे तो साड़ी बांधनी नहीं आती, और अगर मैं साड़ी पहनने के लिए गई तो उसमें काफ़ी देर हो जाएगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे तो नाश्ता करना है अभी। ये सुनकर दादी बोली, अरे बेटा तुम क्यों परेशान होती हो, चलो फटाफट मैं तुम्हें साड़ी पहना देती हूँ, तब तक मैं नौकर को बोलती हूँ नाश्ता सर्व करने के लिए। ये कहकर दादी आगे बढ़ीं और झलक की कमर में हाथ रखकर उसे अपने कमरे में ले जाने लगीं। वहीं झलक ने मुड़कर सिद्धार्थ की ओर देखा, क्योंकि जानबूझकर झलक ने साड़ी पहनने की बात कही थी ताकि वो रणविजय के लिए साड़ी पहन सके। अब ये सब सुनकर सिद्धार्थ के तन बदन में आग लग गई, और जब झलक मुस्कुराकर पीछे मुड़कर उसकी ओर आंख मारती है तो सिद्धार्थ अंदर ही अंदर जल उठा। वो दांत भींचते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर मुझे तड़पाने के लिए ये सब बातें कर रही हो, लेकिन बहुत जल्द तुम खुद पछताओगी। ये बोलकर सिद्धार्थ गुस्से से तिलमिलाता हुआ सीधा अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। फिलहाल दूसरी ओर झलक के पेट में तो जैसे पूरी तरह चूहे कूद रहे थे। वो फटाफट कुछ खाना चाहती थी, लेकिन दादी ने उसे पहले तैयार होने के लिए कहा था, क्योंकि रणविजय अपने प्राइवेट जेट से मुंबई आने वाला था। ये बात उन्होंने पहले ही दादी माँ से शेयर की थी, इसीलिए दादी माँ ने सोचा कि हो सकता है रणविजय उन्हें ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन करे, इसलिए वे सबसे पहले झलक को तैयार करना चाहती थीं। देर न करते हुए दादी उसे कमरे में ले गईं और बड़ी ही खूबसूरत, एकदम सिंपल, हल्के एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली ग्रीन कलर की साड़ी झलक को अपने हाथों से पहनाने लगीं। अब झलक, जिसके पेट में इस वक्त चूहे कूद रहे थे, बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही थी और बोली, दादी ये बाद में भी तो पहन सकते हैं ना, पहले आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तब दादी ने उसके सिर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए कहा, अरे बदमाश मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ी देर के लिए बैठो, सबसे पहले मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊंगी, उसके बाद ही तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी, तुम नहीं जानती कि मैं इस सब के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ, देखना अगर आज रणविजय तुम्हें पसंद कर लेता है तो मैं अपनी बर्थडे पार्टी पर तुम दोनों की सगाई का अनाउंसमेंट कर दूंगी। अब ये सुनकर झलक को काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी, दादी पता नहीं कितने ख्याली पुलाव पका रही हैं, मेरा तो इस बात का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। असल में झलक का इरादा तो सीधा था, अंगूठी बेचकर वहाँ से निकल जाने का, लेकिन फ़िलहाल उसने सोचा कि कुछ दिन दादी का दिल रख लिया जाए, वैसे भी दादी ने उसके लिए काफ़ी कुछ किया था, तो बदले में अगर वो उन्हें थोड़ी सी खुशी दे सकती है तो दे ही दे। ये सोचकर झलक फटाफट तैयार होकर दादी के साथ बाहर आ गई। वहीं सिद्धार्थ, जो नहाने के बाद फटाफट रेडी हुआ था, अब नाश्ते की टेबल पर बैठा था, और जैसे ही झलक साड़ी पहनकर वहां आई, सिद्धार्थ की आंखें तो मानो फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार झलक को इस तरह साड़ी में देखा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, साड़ी के अंदर से उसका पेट थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, जिसमें उसकी नाभि नजर आ रही थी, जो झलक को और भी खूबसूरत बना रही थी। झलक की नाभि के पास का काला तिल ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सफेद बादलों के बीच एक छोटा सा काला बादल हो, बेहद आकर्षक, बेहद प्यारा। एक पल के लिए सिद्धार्थ अपने पलकें झपकाना भूल चुका था। इतना ही नहीं, उस वक्त उसके हाथ में जो कांटा छुरी खाने के लिए रखा हुआ था वो भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। वहीं दादी और झलक का ध्यान उस चीज गिरने की आवाज पर सिद्धार्थ की ओर गया। झलक अब सिद्धार्थ को खुद की ओर यूं देखता देखकर अपने आप में ही थोड़ा थोड़ा शर्मा सी गई थी, लेकिन फिलहाल शर्माना जैसी चीज तो झलक को सूट ही नहीं करती थी, तो जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल किया और दादी को देखकर बोली, देखिए आपने मुझे तैयार होने के लिए बोला था, मैं तैयार हो गई, लेकिन अब मुझे भूख लगी है और अब आप मुझे नहीं रोक सकती। ये बोलकर बिना देर किए झलक ने फटाफट से एक बड़ी सी प्लेट ली और जितने भी एक से बढ़कर एक पराठे, सलाद और सैंडविच रखे हुए थे वो सब अपनी थाली में लगा लिए। फिर दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। ये देख कर दादी जोरों से हंस पड़ी और बोली, अरे बच्ची, इस तरह से क्यों खा रही है? सारा खाना कहीं भाग थोड़ी ना जाएगा, तुम आराम से भी तो खा सकती हो। तब झलक ने मुंह में खाना ठोसते हुए ही बोलने की कोशिश की, दादी मुझे बहुत भूख लगी है, आपको क्या भरोसा कि मुझे खाने भी सही से ना दो। वहीं सिद्धार्थ झलक की हरकत देखकर जोरों से हंसना चाहता था, लेकिन उसे इस तरह से खुलकर हंसने की इजाज़त नहीं थी। फिलहाल झलक ने ढेर सारा खाना खा लिया था और अब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तभी अचानक मेन डोर की घंटी बजी। सारे घर में जैसे एक हलचल सी दौड़ गई। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था रणविजय सिंह। एक ब्लैक टॉक्सीडो सूट, उसके ऊपर हल्की सिल्वर शेड की वॉच और पैरों में चमकते लेदर शूज। उसकी चाल में ऐसा रौब था जैसे पूरा हॉल उसके आने से ठहर गया हो। कंधों पर भारीपन, आंखों में गहलाई और चेहरे पर हल्की मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौजूदगी से ही हवा में किसी रहस्य की गूंज उठ गई हो। उसके पीछे चार बॉडीगार्ड्स खड़े थे, काले सूट, ब्लैक ग्लासेस और ईयरपीस लगाए। उनके कदम रणविजय की चाल के साथ तालमेल बनाकर चल रहे थे। हर कदम पर उसका आत्मविश्वास दिखा रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, पूरा हॉल उसकी मौजूदगी से भर गया। गुड मॉर्निंग गाइस, उसकी भारी और गहरी आवाज़ ने माहौल में ठंडक फैला दी। ऐसी आवाज़ जिसमें रुतबा भी था और रहस्य भी। दादी की आंखों में खुशी चमक उठी। अरे मेरा बेटा आ गया, रणविजय आओ ना बेटा। रणविजय मुस्कुराया और आगे बढ़कर दादी को झुककर प्रणाम किया। उसकी हर हरकत में एक क्लास, एक डिसिप्लिन था, जैसे किसी मिलिट्री ऑफिसर में हो या किसी राजवंश के वंशज में। झलक की नज़र अनायास ही उस पर ठहर गई। उसे ऐसा लगा मानो किसी पुराने किस्से का राजसी किरदार अचानक उसकी जिंदगी में उतर आया हो। उसे देखकर दादी का चेहरा खुशी से खेल उठा। फिलहाल दादी ने रणविजय को गले से लगा लिया। वहीं झलक, जिसने अभी अभी काफी सारा खाना मुंह में ठूंस लिया था, अब समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे, क्योंकि खाना ना तो अंदर जा रहा था ना बाहर निकल पा रहा था। और इसी उधेड़ बुन में उसे जोर से खांसी आने लगी। रणविजय, जो दादी के गले से लगा हुआ था, उसकी नज़र झलक पर जा पड़ी। उसने देर न करते हुए झलक के पास आकर उसके कंधे और कमर को हल्का हल्का हिलाया और तुरंत पानी का ग्लास बढ़ाया। तब झलक टिश्यू पेपर में अपना एक्स्ट्रा खाना निकाल चुकी थी और रणविजय के हाथ से पानी पीने लगी। वहीं सिद्धार्थ, जो खुद पानी लेकर खड़ा था, अब गुस्से से एकदम लाल हो चुका था, क्योंकि उसकी नज़रें रणविजय के उस हाथ पर थीं जो इस वक्त झलक की कमर पर था।
आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए स्टोरी मानिया।